नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साधारणतः हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं कि आजकल कैसा चल रहा है, जीवन की यात्रा सुखी पूर्वक चल रहा है कि नहीं। तो पहले तो यही जवाब मिलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जीवन में। लेकिन जब हम कुरेदने लगते हैं, घर का समाचार पूछते हैं, परिवार का समाचार पूछते हैं, उनका शरीर का समाचार पूछते हैं, तब दबी जबान से बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, ये जीवन नीरस लगने लग रहा है, कई प्रकार की परिस्थितियां आने लग गई है। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जीवन में परिस्थितियां तो आएगी ही, कठिनाइयां आएगी ही, लेकिन यात्रा को तो चलना ही है। इस यात्रा को अच्छी तरह से चलाने के लिए हमें अपने संकल्प पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारा संकल्प क्या क्या काम करता है यह हमें पता नहीं था। हमारी चर्चा के माध्यम से बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि शुभ संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से जीवन रूपी यात्रा बहुत सुहाना बन सकता है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक राजा के पास हाथी था और उस हाथी पर बैठ करके युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए जाता था। राजा को उस हाथी से बहुत प्यार था क्योंकि उस हाथी ने बहुत विजय में साथ देते थे। कुछ दिनों पश्चात वो हाथी बुजुर्ग हो गया। चूंकि बुजुर्ग हो गया था तो युद्ध में नहीं जा पाता था। उसके पश्चात भी राजा को उस हाथी से बहुत प्यार था। राजा ने उस हाथी की सेवा के लिए अनेक नौकर चाकर रख दिए, उसकी संभाल करने के लिए, उसके खाना पीने का ध्यान रखने के लिए, उसकी रहन सहन के लिए, उसकी सफाई के लिए अनेक नौकर चाकर रखे थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा उस हाथी को जैसे साधारणतया स्नान कराने के लिए जाते थे नौकरों के द्वारा, जब स्नान कराने ले गए तो तालाब में कीचड़ था और वो कीचड़ में जैसे ही हाथी नीचे उतरा, हाथी फंस गया, कीचड़ में दलदल में फंस गया और इतना फंस गया कि उसको निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी लोग बहुत प्रयास किए, हाथी निकल नहीं पा रहा था। क्योंकि राजा को उस हाथी से बहुत प्यार था, ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री जाकर के विचार विमर्श किया और मंत्री के मन में एक विचार आया कि एक युद्ध का नगाड़ा बजा दिया जाए, और वैसे ही किया गया। युद्ध का जोरदार नगाड़ा बजाया और जैसे ही नगाड़ा बजा, हाथी के अंदर जो युद्ध में विजय प्राप्त करते थे वो संकल्प उनके अंदर क्रिएट हो गया। वो जान गया कि कहीं मुझे युद्ध में जाना है और जोर से आवाज दे करके उस कीचड़ से बाहर आ गया। तो प्यारे दर्शकों, हम ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, लेकिन वो सोई रहती है, उसको जगाने की आवश्यकता है। लेकिन समय पर जगे तो हमारे बहुत सारे काम सुचारू रूप से चल जाता है। इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आप सबके उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय सूर्य भाई जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी, आप दोनों का इस सुहाना सफर कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
थैंक यू।
गीता बहन जी, जैसे हमने एक छोटी सी कहानी, ये दृष्टांत सुनाया कि अंदर की शक्ति, हम तो अभी तक सुनते थे कि मनुष्य के अंदर ही रहता है, उसको जगाने की आवश्यकता है, लेकिन एक हाथी के अंदर भी वो शक्ति सोई हुई थी और जब उसको स्मृति आई कि मुझे युद्ध में जाना है, तो उसके अंदर वो दलदल में फंसा हुआ था, वो निकल गया। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये संकल्प की शक्ति को कैसे हम अंदर से जगाएं?
एक्चुअली ये मन की ही शक्तियां हैं, और हाथी ने कई बार विजय प्राप्त की थी, अपने राजा को विजयी बनाया था और उसने कई बार युद्ध में ये नगाड़े सुने थे। तो जब वो दलदल में फंस गया तो वापस वही नगाड़ा बजाया गया जिससे उसकी शक्तियां जागृत हो गई, उसे ये पता चल गया कि मैं दलदल से तो निकल सकता हूँ, और वो निकल भी गया।
जी, जी, जी।
वास्तव में यही हाल हम सबका भी है। हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की ताकत रखते हैं, उलझनों को सुलझाने का भी हमारे पास कोई ना कोई समाधान होता है, या हार को विजय में बदलने की भी ताकत हम में है, लेकिन हम उसे भूले रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हनुमान जी लंका जा रहे हैं
जी,
अंगूठी लेकर के
जी, जी।
लेकिन जैसे ही वो सागर के पास पहुंचते हैं तो उनके मन में एक विकल्प आता है कि इतना विशाल सागर मैं कैसे पार करूंगा। हालांकि महावीर हैं, परंतु बचपन में एक छोटी सी घटना उनके साथ हुई थी। जैसा शास्त्रों में बताया है कि बाल्यकाल में वो घूमते घूमते किसी जंगल में चले गए, वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब उस बालक ने, जो हनुमान जी थे, उन ऋषि के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। कभी उन्हें हाथ पर उठाकर ऊपर ले जाते, कभी नीचे ले आते। बहुत देर के बाद ऋषि की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही वो समाधि से उठे तो उनको बहुत खराब लगा कि एक छोटे से बालक ने मेरी तपस्या को खराब कर दिया, भंग कर दिया। और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, श्राप दिया कि तू जिन शक्तियों का इतना घमंड कर रहा है, उनका दुरुपयोग कर रहा है, तू उन्हें भूल जा। अब हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। तो हनुमान जी ने बहुत प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपना श्राप वापस ले लीजिए,
माफ कर दीजिए।
तो ऋषि ने कहा कि महान आत्माओं के वचन तो खाली नहीं जाते हैं, मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, परंतु मैं इसका एक उपाय बता देता हूं जो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तो उपाय यही बताया कि यदि कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा तो तुम्हारी शक्तियां पुनः काम करना शुरू कर देंगी। जामवत उन्हें बोलते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम में तो पवन जैसी ताकत है, जैसे पवन को रोका नहीं जा सकता, जैसे पवन को बांधा नहीं जा सकता, ऐसे तुम्हें रोका या बांधा नहीं जा सकता। बस इतना ही कहना था, उनकी शक्तियों की याद दिला दी और पुनः उनकी शक्तियां जागृत हो गई। और फिर क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, जैसा बताया गया है। यही बात हम सब पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई हमें हमारी शक्तियों से मिला दे, हम लोगों को तो रोज देखते हैं लेकिन कभी हम अपने आप को नहीं देखते। कभी अपने अंतर मन में यदि हम झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि कितनी अनंत शक्तियां, कितने खजाने इसमें भरे पड़े हैं। लेकिन दूसरों को देखने का वक्त है, खुद को देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। कि अगर इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई पावरफुल है जिसे हम मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं, तो वो तीन सत्ताएं हैं।
जी जी,
एक है प्रकृति, दूसरी आत्माएं, और सबसे मोस्ट पावरफुल है परम सत्ता परमात्मा।
मनुष्य जो आज उलझे हुए हैं, ज्यादातर अपने शक्ति को भूलने के कारण से बहुत सारी बातों में उलझ गए हैं। भाई साहब, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आम लोग हैं, इसके अलावा भी जैसे साधारणतः जो नौकरी धंधे वाले लोग हैं, परिवार में जो रहते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग जब अपने कारोबार में आते हैं तो कई बार अपनी वो शक्ति को भूल जाते हैं कि मुझे कैसे जीना है, कैसे। सुबह तो बहुत सारे अच्छे संकल्प करके निकलते हैं लेकिन बाद में अपनी शक्ति को से विचलित हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं।
ये सभी मनुष्यों के साथ हो रहा है कि जब वो कार्य व्यवहार में जाता है तो वो कर्म कॉन्शियस हो जाता है, कर्म का पूरा प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। मान लो कर्म में वो सफल हो रहा है तो उसे खुशी भी होगी और वो सफलता की और आगे बढ़ने के लिए और कुछ सोचेगा और कुछ करेगा
जी।
अब उसे और भी कुछ याद करना चाहिए, ये उसको विस्मृत हो जाता है। खेल सारा स्मृति और विस्मृति का ही है। अगर हमें कुछ चीज स्मरण है तो हम उस चीज का स्वरूप हैं, और यदि हमें कुछ चीजें भूल गई हैं तो सब कुछ भूल गया, शक्तियां भूल गई। तो जैसा गीता बहन ने कहा कि हम अपने अंदर भी झांक कर देखा करें, इसके लिए ये परम आवश्यक है कि रोज कार्य व्यवहार के साथ साथ, अपनी व्यस्त जीवन के साथ साथ, हर एक मनुष्य को एक आधा घंटा अपने लिए भी निकालना चाहिए। इसमें वो एकांत ले, अपने अंदर झांके, अपने जीवन के बारे में चिंतन करे। मैं आपको एक रहस्य और बता देना चाहता हूं। जब से हम आत्माएं इस धरा पर आए थे
जी,
हमने पुनर्जन्म लिए, दो युग देव स्वरूप में हमने बिताया और दो युग पिछले मनुष्य स्वरूप में। अब इन चारों युगों में जो कुछ हमने किया, जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ देखा, जहां हमारी रुचि थी, वो सब हमारे अंदर रिकॉर्ड है, वो हमारे ब्रेन में है। अब वो दबा हुआ है क्योंकि हजारों साल हो गए, वो नीचे चला गया, ऊपर नई नई चीजें रिकॉर्ड होती रही हैं। अब इन सबको हमें जागृत करना होता है, तो इसमें हम लोग जो एक प्रैक्टिस करते हैं, जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो ये जो बुद्धि अथाह ज्ञान और अनंत शक्तियों का भंडार है, सबकी सबकी बुद्धि में है, वो अनंत ज्ञान और अथाह शक्तियां सबके पास है, यानी जो कुछ उन्होंने किया है किसी भी जन्म में वो ब्रेन में रिकॉर्ड
सब भरा हुआ है,
सब भरा हुआ है। तो ये चिप्स की तरह आजकल जैसे मेमोरी कार्ड में भर लेते हैं, ऐसा इसको भी समझ ले, आजकल तो सब लोग इस बात को अच्छी तरह क्लियरली समझ सकते हैं। अभी हम उसे प्ले करना है, एक इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, ब्रेन हमारे पास बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इन सबको जगाते हैं, इसके लिए एक तो चाहिए एकाग्रता, दूसरा जो हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं जिसे हम स्वमान कहते हैं, वो स्वमान बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस स्मृति में आ गया कि मैं तो भगवान की संतान हूं इसलिए मैं महान हूं। अब ये एक फीलिंग है, ये ईगो नहीं है, इसको स्वमान कहते हैं। तो उसके अंदर किसी भी जन्म की जो महानताएं छुपी हुई हैं वो जग जाएंगी, ऐसी शक्तियां। मान लो एक व्यक्ति के सामने एक छोटी सी समस्या आ गई है और समस्या आने पर वो उसके बारे में बहुत सोचने लगा, उसको कुछ हल नहीं मिल रहा, वो परेशान होने लगा है, थोड़ा टेंशन उसको होने लगी, उलझ गया है वो। अब उसको थोड़ा सा एकांत का समय मिलता है, शांति का समय मिलता है, अब वो अपने से बात करता है, यार बात तो इतनी बड़ी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो केवल। लेकिन विद्वानों ने कहा है किसी भी समस्या को यदि विवेकपूर्ण दृष्टि से विचार किया जाए तो वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो लग रही है। तो जब मनुष्य अपने से बात करेगा, अपने चित्त को शांत करेगा और वो इस तरह के संकल्प करे कि कोई बात नहीं, ये समस्या आई है, ये परिस्थिति आई है, कल अवश्य ठीक हो जाएगी, हम इसका कोई मार्ग निकाल लेंगे, चित्त शांत होते ही अंदर जो विवेक भरा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका समाधान उसे सूझने लगेगा। ऐसे ही कोई बात मनुष्य के पास आती है, जब उसके बारे में बहुत सोचता है तो उसकी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। अगर उसे ये याद रहने लगे कि मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये समस्या कुछ नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही नष्ट कर दूंगा जैसे अगरबत्ती जला देने से बदबू नष्ट हो जाती है, तो जैसे उसको अपनी शक्तियों की याद आएगी समस्याएं हल्की होने लगेंगी, लोप हो जाएंगी।
थोड़ा आपसे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि थोड़ा समय कैसे निकालें। वो
हमें देखिए समय भरपूर है, 24 घंटे हमारे लिए होते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें और थोड़ा सा वक्त अपने लिए और परमात्मा के लिए निकालें तो ये समय हमारे आने वाले समय को बहुत सुंदर समय में परिवर्तित कर देगा। तो मैं आपको बता रही थी कि इस सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में तीन सत्ताएं मोस्ट पावरफुल हैं, जो यूं कहे कि तीनों लोकों को चला रही हैं। उसमें जो सबसे पावरफुल सत्ता है, परम सत्ता, वो है परमात्मा, और दूसरी सत्ता है आत्मा, और तीसरी मोस्ट पावरफुल सत्ता है प्रकृति। तीनों का आपस में घनिष्ठ रिलेशन है, तीनों में समानताएं भी बहुत हैं। देखिए आप सोचिए, यदि आत्माएं ना होती तो क्या परमात्मा की कोई पहचान होती? परमात्मा को कोई जान पाता? उसकी वैल्यू को कोई पहचान पाता? और यदि प्रकृति ना होती तो आत्मा की क्या वैल्यू थी? क्या कर सकती थी अकेली आत्मा? आत्मा और प्रकृति का जब आपस में मिलन होता है तब ये लोक रचता है, एक संसार बनता है। तो तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है और समानताएं भी बहुत है। अंतर केवल इतना है कि आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील हैं और परमात्मा सदा शिव है, अनंत है, आदि अनादि है, उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता।
परमात्मा सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, तीनों में नहीं होता।
नहीं, आत्म और प्रकृति परिवर्तनशील है
जी।
आज जो महान आत्मा है कल वो पाप आत्मा भी बन सकती है। प्रकृति कल तक सतो प्रधान थी, आज तमो प्रधान बन गई, असंतुलित हो गई। इनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परमात्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो परमात्मा जो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, तीनों लोकों की सबसे पावरफुल सत्ता है, उसी की संतान आत्माएं हैं, इसीलिए समानताएं हैं। प्रकृति उसकी बहुत बड़ी साथी है, तीनों ही अजर अमर अविनाशी हैं। अगर परमात्मा अजर अमर अविनाशी है तो आत्मा भी है। देखिए, प्रकृति के पांचों तत्व यदि विकराल रूप धारण कर ले तो भी वो आत्मा को नष्ट करने की ताकत नहीं रखते, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ना तो जल में ताकत है, ना अग्नि में, ना किसी अस्त्र शस्त्र में जो आत्मा का विनाश कर सके। इवन जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वशक्तिवान है, जिसे हम भगवान, परमात्मा, खुदा अनेक नामों से जानते हैं, यदि वो भी चाहे कि मैं आत्मा का विनाश कर दूं, आत्मा को नष्ट कर दूं, तो ये ताकत, ये शक्ति उसके पास भी नहीं है। अब आप सोचिए, जिस सत्ता का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, वो किसी भी तरीके से नष्ट नहीं हो सकती, वो कमजोर है या शक्तिशाली है? क्या कहता है आपका विवेक?
अभी तो लोग आप यही समझते हैं कि हम कमजोर हो गए।
नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि जिस सत्ता का किसी भी प्रकार से विनाश संभव नहीं, इवन सर्वशक्तिवान भी नहीं कर सकता, तो वो कमजोर है या शक्तिशाली है?
वो तो शक्तिशाली होगा।
तो हम कमजोर हैं क्या? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, तो हम कमजोर हैं क्या?
हम लेकिन अपने आप को कमजोर,
हमारी नेचुरल नेचर ही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति पर आवरण आ गए हैं हमारे मनोविकारों के, कुछ पूर्व जन्मों के लेप छेप जो लगे हैं वो इन पर आ गए हैं, वो दब गए हैं, सुसुप्त हो गए हैं। परंतु हमारी आत्मा की जो नेचर है वो अति शक्तिशाली, ना कि कमजोर।
बहुत अच्छी बात कह रही है बहन
जी। जी,
ये बात हर व्यक्ति को रियलाइज कर लेनी चाहिए। पहले तो ये कि हम ये देह नहीं हैं, आत्मा है चेतन। आत्मा अति सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली भी होता
भाई
है।
मैं थोड़ा सा बीच में जानना चाहता हूँ कि आत्मा की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस आत्मा को हम समझें, वो आत्मा कहाँ रहती है, क्या कार्य करती है, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती भाई।
तो यही मैं, इस कारण क्योंकि चर्चा नहीं होती तो सभी लोग आत्मा के सब्जेक्ट को, ये सन्यासियों का सब्जेक्ट है, ये विद्वानों का सब्जेक्ट है, ऐसा कहकर छोड़ बैठे हैं, और इस कारण देहभान बढ़ गया तो मनोविकार आ गए। तो हम पुनः सबको याद दिलाना चाहते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, आत्मा अति सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो सचमुच हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये अगर हम याद रखेंगे तो जीवन में आने वाली कोई भी बात हमारे सुहाने सफर को विषैला नहीं बना पाएगी, क्योंकि शक्तिशाली हम हैं। जैसे बुखार हुआ थोड़ा सा, लेकिन हमें एक बहुत पावरफुल दवाई का ज्ञान है, हम बुखार से डरेंगे नहीं, हम फट से दवाई का उपयोग करके ठीक हो जाएंगे। हमें प्यास लगी है, हम प्यास से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास पानी है, हम पी के तृप्त हो जाएंगे। ऐसे ही हम सभी को इस चीज को जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। समस्याएं शक्तिशाली नहीं हैं, बातें शक्तिशाली नहीं हैं, कोई भी जो और चीज हो रही है वो शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली तो हम हैं। तो हमने सूक्ष्म रूप से जो देखा आज तक, अगर हम इस गुड अवेयरनेस में रहते हैं
जी,
तो हमसे चार ओर शक्तिशाली वेव्स निकलती रहती हैं, तरंगे फैलती हैं, और ये तरंगे समस्याओं को सहज ही नष्ट कर देती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, घर घर में ऑल आउट जलाया जाता है
जी जी,
वही मच्छर ना आए, तो मच्छर भागते हैं, कोई चक्कर खा के गिर जाते हैं, कोई मर जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो दुर्गंध है ना वो उनसे सहन नहीं होती। देखिए, उसकी वेव्स निकलती है ना, ठीक ऐसे ही अगर हम इस अवेयरनेस में रहें कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यही शब्द हम यूज करेंगे, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो हमसे जो वेव फैलेगी ना वो इन समस्याओं को मच्छरों की तरह ही भगा देंगी या नष्ट कर देंगी। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, हम अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहें, सब कुछ ठीक ठाक होता रहेगा और हमारे जीवन की यात्रा सचमुच आनंद से भरपूर रहेगी। अन्यथा क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातें जीवन में आती हैं। एक मनुष्य सवेरे से और शाम तक अपनी दिनचर्या को देखे, कितनी बार उसके मूड बदलते हैं, कितनी बार दूसरी चीजों का इफेक्ट उस पर आता रहता है, वो कुछ सोच के चला था, रास्ते में कुछ देखा उसका इफेक्ट, आगे चला किसी ने कुछ बोल दिया उसका इफेक्ट, ऑफिस में पहुंचा ऑफिसर ने जरा सा डांट दिया उसका इफेक्ट, काम पूरा नहीं हो रहा है उसका इफेक्ट। तो मनुष्य इन विन विन इफेक्ट्स में जीवन जीता है, लेकिन अगर वो अपनी कुछ अच्छी अवेयरनेस को कायम रखे, जागृत रखे, तो वो अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय कर सकता है। तो मैं उस बात को जरा और अंडरलाइन करूंगा, समय तो निकालना पड़ता है, समय सबके पास है, फिल्म में जाना हो टाइम है, टीवी पे कोई अच्छा सीरियल देखना हो टाइम है, इच्छा की जरूरत है। अगर मनुष्य इस चीज को समझ ले कि हमको तो समय देना है अपने को, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने बारे में कुछ विचार करने के लिए, अपने खजानों पर एक दृष्टि डालने के लिए, अपने भगवान से परमपिता से सब कुछ पाने के लिए, तो समय उसके पास है। और यदि वो आधा घंटा समय स्पेयर करेगा तो उसके 2 घंटे बचेंगे, क्योंकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी
जी, जी,
उसके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो काम 1 घंटे में होता है वो आधे घंटे में होने लगेगा।
भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे अंदर शक्ति को जगाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और इसमें मैंने एक बात और जोड़ना चाहता हूँ भाई जी, कि आजकल जो पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है और नकारात्मक संकल्प का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा है, और इसके कारण से कई बार मनुष्य सोचता तो है कि मैं अच्छा सोचूंगा, कई बार सुबह उठ करके मनुष्य सोचता है कि थोड़ा सा आज पूजा पाठ कर लिए, कुछ भगवान को याद कर लिए, कुछ भजन कीर्तन कर लिए, अगरबत्ती जला लिए, और ये मन में विचार लाता है कि आज मुझे बहुत अच्छी तरह से जीवन जीना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि मूड बदलता जाता है, किसी के संग में आए, किसी से बातचीत हुई, किसी दूसरे की बात सुने, तो भी उनका विचार बदल जाता है। तो ऐसा क्या करें भाई, भाई साहब, कि जो जनरल मनुष्य लोग रहते हैं आजकल परिवार में, घर में, संसार में, उसका मूड बार बार ना बदले, उसका विचार में ज्यादा परिवर्तन ना आए।
देखिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
जी
ये एक बहुत सुंदर सिस्टम चला था, तो हमारी प्राचीन कल्चर से ही है, लेकिन लोग आजकल इसको भूल बैठे कि सवेरे उठेंगे तो मंदिर में जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे
जी,
गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, कोई रामायण पढ़ता था, जिसका जो प्रिय ग्रंथ है वो उसको पढ़ता था, ताकि सवेरे से सुंदर विचार प्रारंभ हो जाएं। और फिर उसके साथ मनुष्य को क्या करना चाहिए, कोई 1-2 चीज अपने साथ रखनी चाहिए हमेशा, कुछ 1-2 सुंदर विचार लेकर ही कार्य पर जाना चाहिए, क्योंकि बातें तो आएंगी। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, बातें यहाँ न हो, समस्याएं यहाँ न हो, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आज हम लोग भी यहाँ अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सवेरे भगवान के द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों को सुनते हैं, तो जैसे उन महावाक्यों को सुन के आज हमने एक सुंदर विचार ले लिया कि आज हम किसी भी बात से परेशान नहीं होंगे, बहुत हल्के रहेंगे, तो ये एक विचार हमें बहुत हल्का रखेगा। और अगर इस विचार को हम साथ लेकर नहीं जाएंगे तो कोई भी छोटी बात हमें परेशान कर सकती है, तो ऐसा कुछ अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए और कुछ 1-2 बात अपनी पूरी दिनचर्या कर्म क्षेत्र पर साथ लेके जानी चाहिए।
बहुत सुंदर बात आपने बताया भाई साहब, कि हमारे दर्शकों को कि दिन भर में अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी बात शामिल कर लें, बातें तो आएगी, समस्या आएगी, विघ्न आएगा, लेकिन उसको परवाह ना करें, बल्कि एक अच्छे विचार को लेकर कभी दिनचर्या का प्रारंभ करें और शाम तक उसको याद रखें, तो जीवन की यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी, सुहाना बन जाएगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारी, अपने अपने अच्छे विचार रखिए, दोनों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि जीवन जीने की कला क्या होती है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अनेक बातें आएगी, अनेक बातें जाएगी, अनेक लोग मिलेंगे, अनेक बिछड़ेंगे, लेकिन हमारा जो संकल्प का प्रभाव कितना पड़ता है, हमारे दोनों विद्वानों ने बताया कि किस तरह से अपने जीवन में एक छोटा सा विचार, एक सुंदर विचार आपके जीवन में सुगंध पैदा कर देगा, आपके परिवार में खुशहाली ला देगी, आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। तो जरूर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, सुबह उठते ही कुछ शुभ संकल्प ले लें, आज सारा दिन मुझे अच्छे खुशियां भरे जीवन जीना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके प्रति अच्छी कामनाएं रखना है, तो आप देखेंगे कि शाम तक होते होते आपकी खुशी कायम रहेगी। तो आप ये प्रोग्राम देखते रहिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपका सुहाना सफर हो। नमस्कार।